गैर को सुषुप्ति का स्थान तथा ब्रह्मलोक होना श्रुतियां में भी बताया है। सुषुप्ति के समय में देहर में जाने की बात कहकर उसे ब्रह्मलोक कहा है। यह है प्रजा सुषुप्ति काल में ब्रह्म लीन होने पर भी यह नहीं जानती कि वह ब्रह्म में लीन है। इस प्रकार देहर ब्रह्म लोकवाची होने से भी ब्रह्म का ही द्योतक है, प्रकाश है। ये आत्मा सेतु के समान सब लोकों का धारण करने वाला है। इस प्रकार देहर का वाचक आत्मा सब लोकों के धारण करने की शक्ति रखता है और यह शक्ति केवल ब्रह्म में ही है। यदि मर्यादा पूर्वक सबको धारण ना करे तो सभी पदार्थ परस्पर मिल जाएं, अपने धर्मी को छोड़ दें। जीव या प्रकृति में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, वह सब लोकों का धारण करें, वह भी सामर्जात। इस प्रकार देहर से ब्रह्म को प्रयोजनीय समझना चाहिए। जोड़नहारा, आकाश शब्द ब्रह्मार्थक है। यह सभी भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं तथा आकाश आकाश ही नाम और रूपों का निर्वाहक है। श्रुति में देहर आकाश नाम का उल्लेख होने से देहर शब्द की प्रसिद्धि ब्रह्मवाची होने से है। आचार्य कहते हैं कि जरावस्था से वह जीर्ण नहीं होता, बद होने पर मरता नहीं। यह है ब्रह्म और सत है और काम आदि विषय इसमें भले प्रकार स्थित हैं। ये आत्मा पाप पूर्ण रहत जरा मृत्यु से परे शोक से परे चौदह पिपासा से दूर सात काम एवं सात संकल्प है। इस श्रुति में जो जीवात्मा के प्रबोध की शंका होती है परंतु जीवात्मा में सात संकल्प आदि लक्षण नहीं हो सकते, यह भी संभव नहीं कि प्रसन्न जीवात्मा आकाश में व्याप्त होकर उसे धारण आदि कर सके। अतः स्पष्ट है कि उपक्रम में कहे गए अष्ट महागुण जीवात्मा में उपस्थित न हो सकने के कारण देहर शब्द ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। यह शंका हो सकती है कि ब्रह्म को प्राप्त होने पर जीवात्मा भी सात काम एवं सात संकल्प हो सकता है। छंदोग में कहा है कि जय सम प्रसाद आत्मा दे त्याग कर अपने परम ज्योतिर्मयी शुद्ध रूप में स्पन्न होता है। यह आत्मा अमृत और ब्रह्म है, उस ब्रह्म का नाम ही सत है। सत सम प्रसाद से भी स्पष्ट जीवात्मा का कथन है, इसलिए देहर जीवात्मा बोध क्यों नहीं हो सकता, परंतु मुक्त होकर भी जीव का अपने शुद्ध स्वरूप अपने अस्तित्व में वर्तमान रहना कहा है। यह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है किंतु ब्रह्म में मिल नहीं जाता, इसलिए देहर शब्द ब्रह्मवाची ही है। इस प्रकरण में जीव परामर्श ब्रह्म ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस ब्रह्म को प्राप्त करने वाला जीव अष्टगुण सुपन्न स्वरूप में अवस्थान करता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जीव भी अपने में ब्रह्म के अनेक गुणों को प्राप्त कर लेता है और तभी उसे ब्रह्म के अधिक गुण युक्त स्वरूप का ज्ञान होता है। निज रूप का ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु उसकी प्राप्ति होने पर भी जीवात्मा ब्रह्म नहीं बन जाता। इसलिए देहर शब्द का जीवात्मा वाची होना सिद्ध नहीं होता। देहरो आसमानिति में अल्प अल्पत्व अल्प अल्पत्व सुनने के कारण उसके जीवाची होने की शंका होती है, परंतु इसका समाधान दिता जा चुका है। विमुक्त जीवात्मा ब्रह्म की संगति से ही कर्म मुक्त होता है। इससे सिद्ध हुआ कि जीव पहले से संसार कर्म बंधन में होने के कारण देहर नहीं हो सकता। गुणाष्टक विशिष्ट देहर का प्रजापति वाक में आविर्भूत गुणाष्टक जीव के द्वारा अनुकरण करने से भी जीवात्मा देहर से भिन्न है। ब्रह्म की संगति प्राप्त होने की बात सभी स्मृतियों कहती है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मेरे साम को प्राप्त हो गए वे सब सृष्टि काल में उत्पन्न नहीं होते और अल्पकाल से भी व्यथित नहीं होते। इससे मुक्त जीव का ब्रह्म साधर्म तो संयुक्त होता है, परंतु इससे जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि देहर शब्द से ब्रह्म का ही कथन है, जीवात्मा का नहीं। कठपुतली में कहा गया है कि हृदय के मध अवस्थान करने वाला अंगुष्ठ मात्र पुरुष भूत भाव पीछे अगे नियामक और भूत भाव का नियामकत्व जीवात्मा के लिए कदाप संभव नहीं है। अतः अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला पुरुष ब्रह्म ही समझना चाहिए। उपनिषदों में कही हुई ब्रह्म विद्या के जानने का अधिकार मनुष्य को ही है। पशु पक्षी आदि को अन्य योनियों में उत्पन्न जीवात्मा ब्रह्म को नहीं जान सकता, क्योंकि मनुष्य के हृदय का परिमाण अंगूठे के बराबर कहा गया है। इसलिए मनुष्य के हृदय को माप के भाव से ब्रह्म को अंगुष्ठ मात्र पुरुष कथन किया है। देहादि ब्रह्म मनुष्यों से भी अधिक समर्थवान है और वे भी ब्रह्म विद्या को जानने के अधिकारी हैं। इसके संबंध में श्रुति भी है। बहदारण के अनुसार जो जो देवता तादृश ब्रह्म को ब्रह्म की उपासना करता है वह देवता उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। देवताओं को यदि मनुष्य के समान शरीरधारी मान ले तो उन्हें एक स्थान पर रहने वाला भी मानना होगा। यदि ऐसा माना है तो एक ही समय अनेक यज्ञों में दो जाने वाली आहुतियों को वे किस प्रकार ग्रहण करेंगे, क्योंकि शरीरधारी होने से वे एक समय में एक ही जग में जा सकते हैं, इसलिए एक समय में ही अलग अलग जगों में एक देवता को ही आहुति समर्पित करने के विधान में विरोध उत्पन्न होगा। इस विरोध का समाधान तभी हो सकता है जब देवताओं को एक स्थान बाला नाम मानकर सर्वव्यापक सब स्थान पर रहने वाला माना जाए। इस शंका का समाधान यह है कि देवगण एक समय में ही अनेक रूप धारण करने की समर्थ रखते हैं, इसलिए वे एक समय में ही अनेक स्थानों पर समर्पण की जाने वाली हवियों को ग्रहण कर सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क बल्क जी ने देवताओं की संख्या केवल 33 बताई है, परंतु वे उन्हें एक एक का अनेक हो जाना स्वीकार करते हैं। कर्म में विरोध की आशंका ठीक नहीं, जो कर्म मनुख करते हैं वह देवता भी कर सकते हैं। यदि कहें कि कर्म में विरोध नहीं, शब्द में विरोध आता है, क्योंकि देहधारी होने पर देवताओं को जन्म मरण धारण करने वाला मनना होगा, फिर वे अमर नहीं रहेंगे। परंतु ये शंका इसलिए निर्मूल है कि वेद वाक समूह द्वारा देवताओं के नाम रूप ऐश्वर्य आदि की कल्पना की है, जैसे प्रजापति ने सब इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता मनुख पितृगण और ग्रहगण श्रोत्र समूह मंत्रगण और सुभागमयी प्रजाओं की रचना की। यह शब्द श्रुति के प्रत्यक्ष हैं, अनुमान रूप स्मृति में भी सभी के नाम कर्म आदि की ब्रह्म द्वारा सृष्टि करने की बात कही है। ऋग्वेद संहिता के अनुसार वेद से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसलिए वेदों का नित होना सिद्ध होता है। वेद व्यास जी ने कहा है कि युग के अंत में इतिहास और वेद विलीन हो गए थे, फिर उन्हें ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के प्रारंभ में महर्षियों ने तप के द्वारा प्राप्त किया। ऐसे भी वेदों का नाशवान होना सिद्ध नहीं होता। महापरले में सृष्टि के लीन होने से पहले जो नाम रूप होते हैं, वही परले के पश्चात पुनः उत्पन्न होने वाली सृष्टि में भी होते हैं। वेद भी ब्रह्म के एकीभूत हो जाते हैं और नवरचित सृष्टि में फिर प्रकट हो जाते हैं। वेद शब्द के द्वारा ही जो जो आकार पहले थे उनको देखते हुए उन्हीं उन्हीं आकारों में रचना होती है। ऋग्वेद के सूर्य चंद्र मसो धाता तथा पूर्वम कल्प्यत के अनुसार विश्व की रचना करने वाले ब्रह्म ने सूर्य चंद्रमा आदि की पहले के समान ही रचना की। महाभारत में भी कहा गया है कि पहले कल्प में जिन्होंने जिन कर्मों को अपनाया था, उन्होंने बाद की सृष्टि रचनाओं में भी बारंबार उन्हीं कर्मों को प्राप्त किया। जैमिनी का कहना अनुचित नहीं है, क्योंकि जो स्वयं उपास है वह उपासक क्यों बनेगा। देवताओं ने मधु विद्या का फल रूप बा सत्व प्राप्त किया है, तो पुनः वासुत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। छंदोग में सूरज को देवताओं का मधु चक्र रूप और अंतरिक्ष का उस मधु चक्र की तुरी कहा गया है। सूरज का देवताओं के लिए मधु रूप होना तथा किरणों का छेद रूप से वर्णन है। चारों वेदों द्वारा कहे गए कर्म और ओंकार उसके पांच पुष्प हैं। यज्ञ की अग्नि में हुत सोम जो द्रव लाल श्वेत काले तुम्मल और गोप नामक पांच भूत रूप से पांच पुरुषों में रखे गए हैं। उस मंत्र पाव रूप मधुकर द्वारा पूर्वादी तथा ऊपर की इन पांच दिशाओं में फैली हुई किरण रूप नाड़ी मार्ग में यह आदित्य मधु चक्र लाया गया, जहां वसु रुद्र आदित्य मारुत और साध इन पांच देवताओं के क्रम पूर्वक जश तेज इंद्र वीरज और अन्य रूप कारण धारण कर उक्त पांच भूत को अपने अपने गणों में मुख देवताओं द्वारा अग्नि रूप मुख से पीकर तृप्ति प्राप्त की। इनसे सिद्ध हुआ कि मनुखों के मधु और देवताओं ने मधु में समानता नहीं है, इसलिए यमनी ने उन्हें अधिकार न होने का निर्देश किया है, और जिस वस्तु पर अधिकार नहीं उसका प्रयोग भी असंभव ही है। देवगण प्रकाश में दिव्य लोकों में निवास करते हैं, तद देवा ज्योति शां ज्योति के अनुसार वे देवता ज्योतिर्मयी पदार्थों के प्रकाशक कहे गए हैं। फिर वे ज्योति स्वरूप ब्रह्म के उपासक होने के कारण अनविद्या अथवा भिन्न उपासना के अधिकार न होना स्वाभाविक ही है। जैमिनी के द्वारा देवताओं का मधु विद्या में अधिकार न होने की बात कहने पर भी बादरायण उनका अधिकार होना मानते हैं। इस प्रकार के प्रमाण श्रुतियों में भी मिलते हैं। तैतृय ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने उत्पन्न होने की इच्छा की, उन्होंने अग्निहोत्र रूप मिथुन की ओर देखा और सूर्य उदय होने पर उसमें होम किया। वैधारणक में कहा है कि देवताओं में से जिसने उस ब्रह्म को जाना वह भी ब्रह्म हो गया। इससे सिद्ध है कि देवताओं को भी कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा से वे भी लोक संग्रह के लिए सभी कर्म करते हैं। एक कथा प्रसंग है कि जान श्रुति पौतरायण नामक एक धर्मग और अन्नदानी राजा था। एक दिन हम इस रूप में दो ऋषि कुमार फर्श पर झगड़ते हुए जान श्रुति की निंदा और रैकव मुनि की प्रशंसा करके उड़ते हुए निकल गए। राजा को इससे बड़ा दुख हुआ और वह रैकव का पता लगाकर सैकड़ों गाय और एक रथ पेट लेकर रैकव के पास गया। रैकव छगट के नीचे बैठे थे। उन्होंने राजा से कहा, अरे शूद्र, मैं इस स्थान का क्यों क्या करूंगा, तू ही रख। तब दुख्त जानश्रुति ने घर जाकर अपनी पुत्री साथ ली और रैकव के पास आकर उसका विवाह उसके साथ कर दिया। तब रैकव ने उसे दिव्य ज्ञान दिया। शूद्र कहने से जानश्रुति को इसलिए अधिक दुख हुआ कि रैकव ने उसे क्षत्रिय होते हुए भी शूद्र कहा, परंतु रैकव का यह आशा नहीं था। जो शोक के पीछे दौड़े वह शूद्र, इससे जहां शूद्र शब्द को किसी जाति विशेष का वाचक नहीं समझना चाहिए। जानश्रुति को क्षत्रिय मानने के प्रसंग में एक और कथा अंश है कि जानश्रुति को जब ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया उस समय अभी परतारी नाम चैत्रथ क्षत्रिय से जानश्रुति को संगति करने से जानश्रुति के क्षत्रिय होने का आभास मिलता है। रैकव ने अपनी आख्यायिका में कहा था कि शौनक और आमी परतारी चैत्रथ इन दोनों के लिए भोजन परोसने के समय एक भिक्षुक ने भीख मांगी। इन दोनों के भिक्षा न देने पर उसने कहा कि जय अन्न जिसके लिए है उसे आपने क्यों नहीं दिया। अंत में उसे भिक्षा दी गई। साथ ही साथ रथ द्रव कन्या आदि का दान और अन्नदान आदि कर्म भी क्षत्रिय के ही हैं। इन सब से यही सिद्ध होता है कि जानश्रुति शूद्र नहीं क्षत्रिय ही था, क्योंकि शौनक ब्राह्मण थे, वे शूद्र के यहाँ भोजन कदाप नहीं करते। शूद्र के उपनयन आदि संस्कार नहीं होते, इसलिए भी उसे वेद आदि की विद्या में अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या में संस्कार का होना आवश्यक है। इस संबंध में मंडूक उपनिषद में कहा है और इस ब्रह्म विद्या का उपदेश उन्हीं को देना चाहिए जिन्होंने संस्कार कराकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो। आचार्यों की इस प्रकार की इच्छा रहती है कि उनका शेष शूद्रतम भाव का न हो, इसके लिए शेष बनाने से पहले ही वे उसकी जन्म जाति को पूरी जानकारी कर लेते हैं। चंदोक के सतकाम जवाली का क्या प्रसंग मिलता है। महर्षि गौतम के आश्रम में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से जिवाली ने प्रवेश किया और महर्षि से शेष बना लेने की प्रार्थना की। महर्षि ने उसे गोत्र पूछा तो वह नहीं बता सका और अपनी माता से पूछ कर फिर उपस्थित हुआ। उसने महर्षि से कहा कि मेरी माता गोत्र नहीं जानती। उसने इतना ही बताया है कि मेरा नाम ज्वाली और तेरा नाम सत्काम है। तब महर्षि ने विचार किया कि ऐसा सत भाषण तो ब्राह्मण ही कर सकता है, अन नहीं इससे वह अवश्य ही ब्राह्मण है। फिर महर्षि ने उसका संस्कार किया। इससे सिद्ध होता है कि शुद्धतव में संस्कार नहीं हो सकता। वेद का पढ़ना सुनना, उसका अर्थ करना आदि से भी शुद्ध को निषेध किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार वेदरादि को ज्ञान प्राप्ति की बात मिलती है, परंतु वे शूद्र होकर भी सिद्ध बुद्धि वाले थे। कठबली में कहा है कि नियमन करने वाले वाले संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, उसी के पैसे सब कांपते हैं, वह सब का रक्षक दंड देने वाला और पालन करता है, उसे जानने वाला मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर कहा है कि अग्नि और सूरज इसी के पैसे तपते हैं, इसी के पैसे इंद्र वायु और मृत्यु अपने अपने कार्यों में दौड़ते हैं। जहां वज्र भी ब्रह्मवाची है, वज्र से संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, जैसे शासन में से इंद्र आदि अपने अपने कार्यों में लगे हैं, वह अंगुष्ट मात्र पुरुष ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म के सामने सूरज चंद्र नक्षत्र आदि किसी का भी प्रकाश नहीं है। इस दिव्यलोक से परे जो परम ज्योति प्रकाश कह, वह ज्योति ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है। आकाश जो नाम और रूप का निर्वाह करने वाला आकाश है, वही ब्रह्म अमृत और आत्मा है। इसमें नाम रूप से अलग वस्तु को ब्रह्म और आकाश कहा गया है, इसलिए इस प्रकरण में आकाश शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म अमृत और आत्मा जय विशेषण जीवात्मा में संभव नहीं है। आकाश शब्द व्यापकता गुण सहित होने से भी जीव के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। सुषुप्ति काल के संबंध में छंद छंद छांदोग्य का कथन है कि जिस अवस्था में जय पुरुष सोता है, उस समय जय सात रूप अपने ही कारण से संयुक्त होता है। जहां पुरुष से ब्रह्म का ही अभिप्राय है, अब जीव के संबंध में कहते हैं कि जय जीव आत्मा इस देह से निकलकर परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर अपने शुद्ध स्वरूप से युक्त होता है। इस प्रकार सुषुप्ति और मरण का भेद ब्रह्म और जीव का भेद स्पष्ट करता है। फिर कहा है कि जय देहधारी जीव आत्मा सर्व सर्वगात्मा की गोद में चढ़कर देह त्यागता हुआ प्रस्थान करता है। जहां भी सर्वगात्मा ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, ब्रह्म की जिन विभिन्न विशेषणों से कहा, ब्रह्म को जिन विभिन्न विशेषण कहा जाता है वे विशेषण जीव के लिए संभव नहीं है। परमेश्वर ब्रह्म के निमित्त ही प्रयुक्त हो सकता है। जीवात्मा अपनी मुक्त दशा में भी सर्वेश्वर अथवा सपूतों का अधिपति नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म ही जीवों के हृदय में निवास कर उसका शासन करता है। ये वाक समूह जहां ब्रह्म को ही सर्व समर्थ युक्त भाव में कहते हैं। तृतीया पादः समापत।